नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में मैं हूं अतहर सईद आपके साथ, और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश राव। राकेश, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत।
बहुत बहुत शुक्रिया अतहर जी।
तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने श्रीलंका को 60 रन से हराया। प्रधानमंत्री ने कहा उनकी सरकार की प्राथमिकता देश भर में विशेषकर जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में खेलों का विकास करना है। लेह में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 5वें संस्करण की शुरुआत। महिला हॉकी इंडिया लीग में दिल्ली एसजी पाइपर्स ने ओडिशा वॉरियर्स को हराया। पुरुष वर्ग में तमिलनाडु ड्रैगन्स का मुकाबला हैदराबाद तूफान से जारी। भारत के सर्वोच्च रैंकिंग वाले खिलाड़ी बने गुकेश, विश्व रैंकिंग में 4थे स्थान पर पहुंचे। शुरुआत महिला क्रिकेट से करेंगे। क्वालालंपुर में आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत ने श्रीलंका को 60 रन से हराकर सुपर सिक्स में जगह पक्की कर ली है। इस पर और जानकारी लेते हैं अपनी सहयोगी प्रियंका से।
भारत की सलामी बल्लेबाज गोंगाडी त्रिशा की 49 रन की पारी और तेज गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी से भारत ने श्रीलंका पर 60 रन की एक तरफा जीत के साथ ग्रुप ए में शीर्ष पर रहते हुए आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर सिक्स में प्रवेश कर लिया है। बल्लेबाजी के लिए मुश्किल परिस्थितियों में त्रिशा ने 44 गेंदों की पारी में 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 49 रन बनाए, जिससे भारत ने 9 विकेट पर 118 रन का स्कोर खड़ा किया। इसके बाद तेज गेंदबाज जोशीता और शबनम शकील के दो दो विकेट ने शुरुआती 4 ओवर में ही श्रीलंका का स्कोर 4 विकेट पर 9 रन कर दिया। अगले ओवर में कप्तान मनुडी नानायक कारा के रन आउट होने से 12 रन तक श्रीलंका की आधी टीम पवेलियन पहुंच गई। भारत की ओर से पारुनिका सिसोदिया ने भी 2 विकेट लेने में सफलता हासिल की। इस प्रकार श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर मात्र 58 रन ही बना सकी। भारत की सलामी बल्लेबाज गोंगाडी त्रिशा को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। भारत ने ग्रुप चरण के अपने अभियान को 3 मैचों में जीत के साथ खत्म किया। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
राकेश, भारतीय महिला टीम की अगर बात करें तो इस जीत को शानदार जीत कहा जा सकता है। उसने श्रीलंका को केवल 58 रन पर समेट कर 60 रन से शानदार विजय प्राप्त की।
देखिए अतर जी, एक चीज है कि जब हम विमेन्स की या यू नो मेंस की अंडर 19 टीम की बात जब हम करते हैं जी, तो वहाँ कंसिस्टेंसी एक चीज होती है जो ज्यादा हमको देखने को नहीं मिलती। तो ये जो 60 रन की जीत है, दैट मीन्स इंडिया ने जो रन बनाए हैं ये श्रीलंका के टोटल से दुगने हैं।
हालांकि अगर भारत के स्कोर की बात करूं तो भारत ने भी कोई बहुत बड़ा स्कोर तो खड़ा नहीं
किया। मगर देखिए, हम लोग अगर इसे कंपेयर करते हैं मेंस क्रिकेट से या वेमेन्स क्रिकेट से, तभी आपको छोटा लग रहा है। इस लेवल पे नॉर्मली जो है आप देखेंगे कि बड़े बड़े स्कोर नहीं बनते हैं
जी,
अनलेस दो टीमें में इतना ज्यादा डिफरेंस है कि अब जैसे कि कितने कंट्रीज हैं जो क्रिकेट प्लेइंग यू नो लाइक कंट्रीज में जिनका नाम नहीं आता है। जब वो खेलेंगे तब आपको ये बड़े बड़े डिफरेंस दिखेंगे, क्योंकि जितना फॉर्मेट छोटा होता जाएगा आपको डिफीट का जो यू नो लाइक मार्जिन है या विक्ट्री मार्जिन, आप उसको यू नो जैसे भी देखें वो कम होता है। तो यहां भी देखें तो मगर इस हिसाब से जैसे गेम हुआ है, आपने बिल्कुल यू नो लाइक रन बॉल, आपने अगर रन बनाए हैं तो दूसरी टीम ने उसके आधे बनाए हैं, तो आपके गेंदबाजों ने बहुत अच्छा जो है प्रदर्शन किया,
बहुत
है।
अच्छा, और खास तौर पर अगर हम बात करें तो शबनम शकील ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, जोशीता और पारुनिका सिसोदिया ने कहीं ना कहीं प्रभावित किया है, तीनों ने ही दो दो विकेट लेने में कामयाबी हासिल की।
बिल्कुल, और देखिए ये टीम जो है ये अभी बिल्कुल मतलब जैसे टॉप सिक्स में आ गई है
जी,
असली मुकाबला अब यहां से शुरू होता है आपके लिए।
तो अब राकेश क्या रणनीति रहेगी अगर सुपर सिक्स की बात करें तो?
नहीं, सुपर सिक्स में देखिए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको वही चीज करनी है जो आप अब तक करते चले आ रहे हैं। कोई ऐसा सुपर सिक्स में आ गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी स्ट्रैटेजीज में कुछ बहुत विशेष यू नो कुछ ऐसा चेंज आएगा, लेकिन हाँ आपको ये जरूर करना है कि आपने जो कुछ भी अभी किया है, जैसे श्रीलंका के साथ आपको ये जो 120 रन के आसपास जो आपने जो रन बॉल बनाए 118 जैसे रन या 129 रन
जी जी
119 रन, ये जो टारगेट, इससे आपको ज्यादा लंबी पारी खेलनी पड़ेगी पहले बैटिंग करके।
बिल्कुल, हालांकि अगर भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो राकेश त्रिशना ने ठोस बल्लेबाजी की।
बिल्कुल, बिल्कुल।
चलिए आगे
मगर देखिए ओवरऑल तो ये मैच को बहुत इम्प्रेसिव जो है यू लाइक बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं नहीं मानूंगा. हाँ, गेंदबाजों ने आपकी जीत को एक बहुत ही एक डिफरेंट लुक दे दिया है कि हाँ साहब हमने 60 रन से एक T20 का मैच जीत गया.
एक अच्छी शुरुआत तो कही जा सकती है. अच्छा, भारत और इंग्लैंड की बात करें तो भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों की श्रृंखला में जीत के साथ आगाज किया है. भारत ने कल पहले T20 मैच में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया. इंग्लैंड ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 133 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे भारत ने 12 ओवर और 5 गेंद में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया. सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 34 गेंदों में 79 रन की शानदार पारी खेली. उन्होंने 5 चौके लगाए और 8 छक्के लगाए. इससे पहले इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 132 रन बनाए. श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा. राकेश, इंग्लैंड के खिलाफ T20 श्रृंखला की बात करें तो भारत ने शानदार जीत हासिल कर श्रृंखला में बढ़त बना ली है.
बिल्कुल, और इसमें ये याद रखना है कि ये वो टीम है जो कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी जो भी होने वाली है अब से मेरे ख्याल से 20 दिनों के अंदर, उसमें सिर्फ 2 मेंबर्स ऐसे थे जो इस टीम में खेले हैं, और इंग्लैंड की लगभग वही टीम है जो वहां जाके खेलने वाली है.
बिल्कुल,
तो ये एक डिफरेंस है 2 टीमों में कि हमारे पास ये जो यंगस्टर्स आ रहे हैं वो अभी अपनी जगह व्हाइट बॉल क्रिकेट में ODI फॉर्मेट में पक्की नहीं कर पाए हैं. और उस टीम ने 9 लोग ऐसे थे जो कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं जाएंगे, उन्होंने एक इंग्लैंड की एक बहुत ही स्ट्रांग टीम को बहुत आराम से हरा दिया.
और इस क्रम में 2 खिलाड़ियों ने खासा हमें प्रभावित भी किया है. सलामी बल्लेबाज की बात करें, अभिषेक शर्मा की बात करें तो उन्होंने 79 रन की शानदार पारी खेली. और गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती की बात करें तो उन्होंने भी 3 विकेट लेने में कामयाबी हासिल की.
देखिये, ये दोनों वो हैं जो कि IPL में जिन्होंने कि बहुत इम्प्रेस किया है. और इस विकेट पे जहां पे कि मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड ने पिच को ठीक से रीड नहीं किया है, वो फास्ट बॉलर्स के साथ खेले, इंडिया टॉप 3 स्पिनर्स के साथ खेली है ये मैच, और उसका अंतर आपको ये पता लग जाता है कि पहले 6 ओवर में, पहले 10 ओवर में ही इंग्लैंड की हालत कितनी खराब थी.
और बात खेलो इंडिया की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता देश भर में विशेषकर जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में खेलों का विकास करना है. लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा ने आज NDS आइस हॉकी स्टेडियम लेह में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 5वें संस्करण के उद्घाटन समारोह की शुरुआत की. एक रिपोर्ट.
खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 के उद्घाटन समारोह के दौरान एक संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में खेल गतिविधियों को फैलाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है और कहा है कि कैसे लद्दाख और जम्मू कश्मीर ने न केवल हमारे देश में खेल की संस्कृति को बढ़ाया है बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा दिया है जो देश की सुंदरता और विविधता को प्रदर्शित करता है. आज उद्घाटन समारोह में प्रतिभागियों, गणमान्य व्यक्तियों और दर्शकों का स्वागत रंगों और उत्साह के साथ किया गया. स्टेडियम में बैंड प्रदर्शन और सांस्कृतिक नृत्यों के साथ उत्सव का माहौल रहा. समारोह में पूर्वी लद्दाख के खानाबदोश चांगपाओ का पारंपरिक नृत्य जाबरो पेश किया गया. देश भर से 400 से अधिक एथलीट आइस हॉकी और आइस स्केटिंग के 2 श्रेणियों के खेलो इंडिया आयोजनों में भाग ले रहे हैं. इस आयोजन ने न केवल स्थानीय या राष्ट्रीय स्तर के दर्शकों को आकर्षित किया बल्कि इसमें विदेशी पर्यटक भी शामिल हो रहे हैं. लेह में खेलो इंडिया का समापन समारोह 27 जनवरी 2025 को होगा. खेलो इंडिया का दूसरा चरण इस साल फरवरी में जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग में आयोजित किया जाएगा. लेह लद्दाख से खुर्शीद यूसुफ की रिपोर्ट के साथ मैं प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स.
राकेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते रहते हैं, हम देखते हैं. उन्होंने आज भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता देश भर में खेलों का विकास करना है और यकीनन उनकी सोच, उनके विजन के सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं. राकेश, नई नई खेल प्रतिभाएं हमारे सामने आ रही हैं.
देखिए, जब से ये सरकार आई है 2014 से, एक चीज तो बिल्कुल तय है कि मतलब जो चाहे आप उसे खिलाड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या आप उनको एडमिनिस्ट्रेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मिनिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उनको लगता है कि हाँ ये एक बहुत ही एक अच्छा शिफ्ट है जो पहले का जो स्टैंड हुआ करता था. पहले की जितनी सरकारें हमने देखी, खेल को उस सीरियसनेस से नहीं देखा जाता था जो हम आज देख रहे हैं.
बिल्कुल.
और उससे बड़ी बात यह है कि जो खिलाड़ी है उसको महत्व दिया जा रहा है, उनको अच्छा फील किया जा रहा है कि हाँ साहब हम आपके लिए हैं. जब भी टीम बाहर जाती है, जब भी टीम वापस आती है, देखिए प्रधानमंत्री के निवास पे एक चाय पार्टी जरूर होती है.
रूप से मिलते हैं उनको
सबको और उनके नाम पता है, उनको सबके नाम पता है. ऑफ कोर्स उनकी टीम उनके साथ रहती है, लेकिन ये बहुत अच्छी फीलिंग है अगर आप किसी भी खिलाड़ी से पूछें. अब हम अगर ये देखें कि खेलो इंडिया जो है ये एक जो एक पहल हुई है इतने सालों से, मेरे ख्याल से उससे बहुत फायदा अभी हो रहा है, लेकिन उसका जो असली फायदा होगा वो अभी आने वाले सालों में देखने को मिलेगा।
और अब बात हॉकी की। महिला हॉकी इंडिया लीग में दिल्ली एसजी पाइपर्स ने ओडिशा वॉरियर्स को रोमांचक मुकाबले में पेनाल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया है। आज रांची में खेले गए मैच में निर्धारित समय तक दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर रहीं। पुरुष वर्ग में तमिलनाडु ड्रैगन्स का मुकाबला हैदराबाद तूफान से जारी है। राकेश, निसंदेह इस तरह के आयोजनों से देश में हॉकी को बढ़ावा मिल रहा है।
देखिए, जब से विमेंस लीग रिज्यूम हुई है और ये जो हमको देखने को मिल रहा है, ये इससे जो फायदे हमने देखे पिछले 2-3 सालों में, चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे वो एशियन गेम्स हो, एशियन चैंपियनशिप हो, ये लीग का यहाँ होना बहुत जरूरी था। कि देखिए, क्योंकि मेंस हॉकी में हमने ये चीज देखी है कि लीग से भारत को बहुत फायदा हुआ है, और अब ये विमेंस के लिए भी ये लीग हुई है, तो इसका जो फायदा है देखने को मिलेगा
आने वाले कल में।
बिल्कुल।
और अब ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मेडिसन कीज ने महिला एकल सेमीफाइनल में इगा स्वाइतेक को हराकर अपने दूसरे ग्रैंड स्लैम फाइनल में प्रवेश किया। कीज ने स्वाइतेक को आज रोमांचक मुकाबले में हराया। टाई ब्रेकर तक चले मैच में कीज ने स्वाइतेक को 5-7, 6-1, 7-6 से हराया। अब शनिवार रात को फाइनल में कीज का सामना अरेना सबालेंका से होगा। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी सबालेंका ने स्पेन की बडोसा पर 6-4, 6-2 से जीत दर्ज की। बात वहीं आ जाती है कि अब अगला नंबर किसका है, यानी जो नंबर 1 का जो टाइटल है सबालेंका के पास वो बरकरार रहेगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन वो जीतने जा रही हैं, या कोई उलटफेर आपको दिखाई दे रहा है जहां तक महिला फाइनल का सवाल है?
देखिए, पिछले 26 साल में ऐसा ये पहली बार हुआ है कि किसी खिलाड़ी को 3 लगातार ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जीतने का मौका मिले जी। और अगर ये मैच जीत जाती हैं तो सबालेंका ऐसी हो जाएंगी जो कि मार्टिना हिंगिस के बाद दूसरी ऐसी खिलाड़ी होंगी जिन्होंने कि 3 लगातार ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जीते। लेकिन उनका मैच इन जिनसे है वो उनकी वरीयता जो है वो 19वें नंबर की है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए अपने 6 मैचेस में काफी ऐसे ऐसे बड़े बड़े नामों को हराया है। वो जैसे लास्ट मैच भी, जैसे अभी जैसे आपने जिक्र किया
जी,
ये मैच पॉइंट डाउन थी, थर्ड सेट के जो टाई ब्रेकर था उसमें 5-7 डाउन थी, उसके बावजूद वो आके जीती है। तो देखिए उनका भी क्या ग्रिट है। तो सबालेंका को थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन उनका फॉर्म, उनका कॉन्फिडेंस और उनकी रैंकिंग सब उनके फेवर।
और अब बात करेंगे शतरंज की। तो शतरंज में भारत के गोकेश सर्वोच्च रैंकिंग वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वे विश्व रैंकिंग में 4th स्थान पर पहुंच गए हैं। गोकेश ने पिछले वर्ष सिंगापुर में चीन के डिंग लेरेन को हराकर विश्व खिताब जीता था। एक रिपोर्ट। विश्व चैंपियन डी गुकेश नई उपलब्धियां दर्ज करते हुए आज विश्व शतरंज रैंकिंग में 4th स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने अर्जुन एरिगेसी को पीछे छोड़कर ये रैंकिंग हासिल की है। 18 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने नीदरलैंड के विस्गोन जी में चल रहे टाटा स्टील टूर्नामेंट में जर्मनी की विंसेंट कीमर को हराकर ये उपलब्धि हासिल की। टूर्नामेंट में ये उनकी दूसरी जीत थी। गुकेश को हाल ही में भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार ध्यानचंद खेल रत्न से नवाजा गया था। गुकेश के अब 2784 रेटिंग अंक हो गए हैं। एरिगेसी 779.5 रेटिंग अंकों के साथ 5वें स्थान पर खिसक गए। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन 2832.5 अंक के साथ निर्विवाद रूप से विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बने हुए हैं। उनके बाद अमेरिका के 2 खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर हिकारू नाकामुरा और फेबियानो कारुआना का नंबर आता है। एरिगेसी पिछले साल सितंबर में भारत के सर्वोच्च रैंकिंग वाले खिलाड़ी बने थे। उन्होंने इसके बाद दिसंबर में अपनी सर्वोच्च रेटिंग 2801 हासिल की थी। वो 2800 या इससे अधिक रेटिंग अंक हासिल करने वाले दुनिया के 15वें और विश्वनाथन आनंद के बाद भारत के दूसरे खिलाड़ी हैं। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। और अंत में बात बैडमिंटन की। भारत के लक्ष्य सेन इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। आज जकार्ता में पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में जापान के केंता निशिमोतो ने लक्ष्य सेन को 21-16, 12-21 और 23-21 से हराया। पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी थाईलैंड के केद्रेन देचापोल पुआवर नुक्रोह की जोड़ी से 20-22, 21-23 से हार गई है। मिक्स डबल में तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की भारतीय जोड़ी को भी हार का सामना करना पड़ा। और महिला डबल्स में तनिषा क्रास्टो और अश्वनी पोनप्पा की जोड़ी भी हार कर बाहर हो गई है। और अब आशुताओं इसी के साथ अतहर सईद और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दें। नमस्कार।